जब आप भारत से, पाकिस्तान से, साउथ एशिया की किसी कंट्री से ऑस्ट्रेलिया में आते हैं माइग्रेशन लेके, परमानेंट रेजिडेंसी लेके, जॉब मार्केट में उतरते ही एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, वो है ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस। ये ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस होता क्या है और ये कितनी बड़ी समस्या है देश और प्रवासियों के लिए, ये जानने के लिए हमने नीति विशेषज्ञ उस्मान चौहान से बात की। उस्मान जी, SBS के हिंदी कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
मुझे बुलाने का बहुत शुक्रिया।
उस्मान जी, हमने आपसे पिछले कई अंकों में बात की थी अंडर एम्प्लॉयमेंट की, ऑस्ट्रेलिया में किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट को लेके पॉलिसी नहीं है, और अब ये सामने आ रहा है कि जितने भी माइग्रेंट्स इधर आते हैं साउथ एशिया से, उनको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस। आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे?
बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। ये असल में अब सबसे बड़ा मसला हो चुका है उन माइग्रेंट्स के लिए जो जनूबी एशिया वगैरह से आते हैं, क्योंकि उनके पास तालीम तो होती है, एक्सपीरियंस अपने मुल्क में होता है, पढ़े लिखे होते हैं, मेहनती होते हैं, उनको समझ आता है किस तरह काम करना है, लेकिन उनको यहाँ गोली दे देते हैं एम्प्लॉयर्स के आपके पास ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस नहीं है। इसी तरह कनाडा में भी ये होता है, वो कहते हैं आपके पास कनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है, और इस रुकावट के लिए कोई हल होता नहीं। उसकी वजह यह है कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता तो आप काम नहीं कर सकते, और आप काम नहीं कर सकते तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता
जी।
और लिहाजा ये अब सबसे बड़ी रुकावट, सबसे बड़ा बैरियर बन चुका है नए माइग्रेंट्स के लिए जो यहाँ सेटल होना चाहते हैं। रिसर्च बताती है हमें कि अक्सर ये मसला 2, 3 या 4 साल बाद भी, उनके आने के बाद भी ये उनके साथ रहता है, और इस वजह से वो या अपने एक काम से एक तबका नीचे या दो तबके नीचे कुछ ढूंढते हैं, या वो एक मायूसी में फिर पड़ जाते हैं और उनको ये नहीं पता होता कि वो आगे अपनी पुरानी फील्ड में किस तरह दोबारा अपना सिलसिला जारी शुरू करें।
जी उस्मान जी, मैं ये जानना चाहूंगा, आपने बात की शिक्षा की, एजुकेशन की, जहां तक मेरी नॉलेज है वहां हमारे साउथ एशियन कंट्रीज की जो शिक्षा प्रणाली है वो ज्यादातर इंस्पायर्ड है ब्रिटिश या अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम से, जो कि कई हद तक ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन के बराबर है। और जो लोग यहाँ आते हैं प्रवासी, वो मल्टीनेशनल कंपनीज में ही काम कर रहे होते हैं एशिया में या साउथ एशिया में, तो फिर ये ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस की जो एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड या एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी से रिलेटेड है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में, ये क्यों है?
बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने आमिर साहब। दर हकीकत इसकी कोई इकोनॉमिक बेसिस नहीं है, इसकी कोई असल बुनियाद नहीं है, क्योंकि आपने सही कहा कि इंडिया में अब जो तालीम फराहम की जाती है या दूसरे ममालिक पाकिस्तान वगैरह में, वो अच्छी यूनिवर्सिटीज में यहाँ के मुतबादिल है, बराबर है, या शायद बेहतर भी है, खासतौर पर जो टेक्निकल प्रोफेशन होते हैं, आपके जो IIT के ग्रेजुएट, IIM के होते हैं, वो तो बेहतर होते हैं यहाँ के स्टूडेंट से, लेकिन इसके बावजूद उनको ये रुकावट पेश आती है, और ये एक बहुत सख्त और एक नाकाबले तस्खीर अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम है, क्योंकि वो जब तक कहेंगे कि ये एक्सपीरियंस काफी नहीं है, जब तक वो हाँ नहीं कहते, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। और इसमें एक और बात आ जाती है कि अक्सर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में जो माइग्रेंट्स आते हैं यूरोप से, उनको ये रुकावट नहीं पेश आती, क्योंकि वो उनकी क्रेडेंशियल्स को तस्लीम करते हैं, कहते हैं कि ये यूरोपियन है। हालांकि ये जरूरी नहीं कि यूरोपियन यूनिवर्सिटी सब बेहतर हो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी से, डिपेंड करता है सूरत हाल पे।
उस्मान जी, आप कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के नीति पे नजर रखते हैं, जितने भी रिसर्च हो रहे हैं आप खुद भी रिसर्च करते हैं, मैं आपसे यहाँ जानना चाहूंगा कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट जो होंगे इस समस्या के, वो देश की इकोनॉमी पे, चाहे कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, या जो आने वाले प्रवासी हैं माइग्रेंट, उन पे कितने होते हैं?
जबरदस्त सवाल पूछा है आपने। असल में ये एक बहुत सख्त गंभीर मसला है, और इसकी जो है इक्तिसादियत, इकोनॉमी पे बहुत बड़ा मसला पड़ता है। हमें पता है कि कनाडा में ये कनेडियन एक्सपीरियंस की जो गोली दी जाती है माइग्रेंट्स को, ये इसकी वजह से कोई $2.5 to 3 खरब का नुकसान होता है सालाना। पहले 2 खरब होता था, आज से 15 साल पहले, और अब ज्यादा से ज्यादा होता जा रहा है। असल में ये मसला जो है कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा खराब होता जा रहा है। हालांकि इसके खिलाफ पॉलिसीज जो है लोगों ने अनाउंस तो की हैं, लेकिन इनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है उसमें कोई खास बात नहीं की गई। और मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि कनाडा के कई सूबे हैं, प्रोविंसेस, मसलन एक ऑन्टेरियो है, उन्होंने कहा है कि ये जो मसला है डिस्क्रिमिनेशन का, ये इम्तियाजी सलूक का, ये एक ह्यूमन राइट्स का इशू है। यानी जो कनेडियन एक्सपीरियंस की गोली दी जाती है या ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस की, ये एक किस्म की इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है, वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स।
उस्मान जी, आपने ह्यूमन राइट्स की बात की, तो यूएन जो संयुक्त राष्ट्र है उसके जो मिलेनियम गोल्स होते हैं उसमें एजुकेशन और उससे रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन जब एजुकेशन के हिसाब से आपको एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिल रहा है तो दो चीजें सामने आएंगी, जैसा आपकी रिसर्च भी बताती है कि सैलरी डिफरेंस और अंडर एम्प्लॉयमेंट। इस पर ऑस्ट्रेलिया या कनाडा की सरकारें कुछ नीति बना रही हैं? आप कह रहे हैं कि ये तो समस्या गंभीर होती जा रही है और जो इकोनॉमी लॉस हो रहा है वो भी बढ़ता जा रहा है।
बिल्कुल, असल में ये उस लेवल पे जो है गवर्नमेंट पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन में बहुत मसला है। अभी भी जो यहाँ गवर्नमेंट आई है उसके लिए ये एक प्रायोरिटी नहीं साबित हो रही
जी।
मेरे हिसाब से। और कनाडा में हालांकि कहते हैं कि एक प्रायोरिटी है और वो पैसे इस पे खर्चते भी हैं, तकरीबन पिछले आप कह लें 7 सालों में उन्होंने $100 मिलियन स्पेंड किया है इस टाइप की एंटी डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट पे, लेकिन फिर भी कोई खास इनको हल नहीं मिला, इनको कोई खास सलूशन नहीं मिला, क्योंकि एम्प्लॉयर्स जो हैं वो इससे आगे बढ़ना नहीं चाहते, वो मदद नहीं करना चाहते इन पॉलिसीज में। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट आपने जिस तरह गुजारिश की बिल्कुल सही है, आपको पता है कि जो हमारे यंगस्टर्स आते हैं इनको अक्सर जॉब्स मिलती हैं एक तबका नीचे और वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, फिर उनकी जो इनकम ट्रेजेक्ट्री होती है उसमें आगे जाके बहुत बड़े मसले होते हैं। आप ये कह सकते हैं कि हमें पता है कनाडा में व्हाइट्स और माइनॉरिटीज यानी जो वहां के रहने वाले गोरे हैं और जो देसी आते हैं उनमें तकरीबन 25-30% की आमदनी में फर्क, वेज डिफरेंशियल नजर आता है कई प्रोफेशंस में। और उसकी वजह एक तरफ ये भी होती है कि उन्होंने शुरू इस कैनेडियन एक्सपीरियंस की रुकावट से की थी, तो कम तबके पे की थी इसलिए वो अब कम कमाते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में भी यही हो रहा है
जी। उस्मान जी, अभी SBS हिंदी ने एक स्टोरी की थी जिसमें बताया कि जो यंग माइग्रेंट्स आते हैं और फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट का शिकार होते हैं या एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होते हैं, वो किसी तरीके से क्राइम की तरफ भी फिर बढ़ना शुरू कर देते हैं अपनी अडॉप्टेड कंट्रीज में, कनाडा हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो। आप सहमत होंगे इससे?
जी जी, मैं मुत्तफिक हूँ आपकी बात से। और क्राइम और इस तरह की जो है खतरनाक जो है आसार, ये हमें हर जगह नजर आते हैं। यंगस्टर्स जो हैं जब उनको एक अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती, हालांकि वो पढ़े लिखे हैं और मेहनती भी हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता फ्रस्ट्रेशन के बहुत सख्त मनफी असरात भी, सीरियस नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं क्राइम पे, डिस्क्रिमिनेशन पे, डी रेडिकलाइजेशन पे, इनमें जो है हमारे इलाके के जो रिसर्चर्स हैं, देसी रिसर्चर्स वगैरह, हालांकि हैं काफी लोग मेहनत करते हैं, मैं भी इसमें मुलविस हूँ, मुबतला हूँ इस रिसर्च में, हमें शामिल नहीं करते इस डिबेट में, ये अपनों ही में जो है ये रिसर्च करते हैं थोड़ी बहुत और फिर अपनी सोल्यूशन पैदा करके वो फेलियर्स होते हैं नेचुरली। जिस तरह आप देखते हैं कि इनकी इमिग्रेशन पॉलिसी में ये फेलियर है कि हमें वर्क वीजा की सोबत पे यहाँ लाते हैं, फिर हमें जॉब्स नहीं देते वगैरह वगैरह, तो ये मैं कहना चाहूंगा कि हमें शामिल करना चाहिए।
तो कहीं आप कह रहे हैं कि बैलेंस नहीं है दोनों अप्रोच में, नीति बनाने में और मशवरा करने में?
बिल्कुल, ये इम्प्लीमेंटेशन में और कंसल्टेशन में हमारी ज्यादा जरूरत है, हमारी इनपुट की, हमारी आवाज की, इन्हें हमारी बातें, हमारी रिसर्चर्स की बातें, हमारी तहकीकात सुननी चाहिए। अगर आप देखें कि ये पब्लिक सर्विस जो है ऑस्ट्रेलिया में भी और कनाडा में भी खास तौर पे, तो आप देखें कि वहाँ कनाडा में 20% जो आबादी है वो माइनॉरिटीज हैं, लेकिन सिर्फ 14% जो है पब्लिक सर्विस में एम्प्लॉयज वो माइनॉरिटीज हैं। तो आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट की भी थिंकिंग में, गवर्नमेंट की भी सोच में वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही एंटी डिस्क्रिमिनेशन।
उस्मान जी, SBS हिंदी से बात करने के लिए धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि सरकार की और लोगों की सोच बदलेगी।
मुझे बुलाने का बहुत शुक्रिया।